Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna
ગિરિધરી રાધા ગિરિધરી રાધે જય જગન્નાથ જય જગન્નાથ જય બલદેવ જય સુભદ્રા જય ગોરનિતાય જય ગૌરનિતાય ગોરનિતાય જય ગૌરનિતાય ભક્તિ વેદાંત સ્વામી જગદગુરુ શ્રીલ પ્રભુપાદ મહારાજ કી જય. ઓમ નિત્યલીલા પ્રવેશ વિષ્ણુપાદ પરિવાર સુખાચાર્ય અષ્ટોતર શત ભક્તિ વેદાંત સસ્તિ ઠાકુર પ્રભુપાદ કી જય. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. જય શ્રી નામાચાર્ય હરિદાસ ઠાકુર કી જય. જય શ્રી શ્રી રાધા ગિરધારીજી કી જય. જય શ્રી શ્રી જગન્નાથ બલદેવ સુભદ્રાજી કી જય. જય શ્રી શ્રી ગૌર નિતાય કી જય. જય શ્રી શ્રી યુગ ધર્મ હરિનામ સંકીર્તન કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. પુરુષોત્તમ માસ કી જય. ચતુર્માસ કી જય. ચતુર્માસ વ્રત કી જય. યુગ ધર્મ હરિનામ સંકીર્તન મહાયજ્ઞ કી સબ વેદ ભક્ત વૃંદ કી નિતાય ગૌર હરિ પ્રેમાનંદે. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ અજ્ઞાનતિ નિરંધસ્ય જ્ઞાનાંજના કમલમ શ્રી ગુરુના વૈષ્ણવાં ચ શ્રી રૂપં સાગ્રજાતં રઘુનાથાંબિતં તં સજીવં સાધવૈતં સાવધૂતં પરિજન સહિતં કૃષ્ણ ચૈતન્ય શ્રી રાધા કૃષ્ણ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધો જગત્પતિ ગોપેશ તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વિશ્વભાનુ વાંછા ફલ पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे जय ताम सुरतो पंगोर मन मन मंद मते गति मत सर्वस्व पदाम्बुजो श्री राधा मदन मोहन हरे कृष्ण। तो रविवार के इस प्रीति भोज उत्सव में आए हुए सभी भक्तों का राधा गिरधारी मंदिर में स्वागत है। शास्त्रों और महात्माओं विद्वानों द्वारा यह बताया गया है कि मनुष्य जीवन में हमारी जितनी भी आवश्यकताएं हैं मनुष्य जीवन में हमारी अनेक आवश्यकताएं हैं उसमें भक्तों का संग सर्वोपरि है। प्रत्येक मनुष्य जीवन प्राप्त किए जीव को जानना चाहिए कि हमारे जीवन में भक्तों के संग की भी बहुत आवश्यकता है। वैसे माता देवहूति करदम जी से प्रार्थना करती हुई कहती है कि हे प्रभु, मैंने आपका संग भौतिक भोगों के हेतु से किया था, लेकिन फिर भी भौतिक भोगों के हेतु से अगर किसी का संग किया जाता है तो वो निश्चित बंधन का कारण। लेकिन फिर भी और वही संग है, कहती है माता देवहूति, संगो यह संस्रिते हेतु विहितो अधिया। हे प्रभु, किसी का संग भौतिक लाभ के लिए या भौतिक भोगों के हेतु से किया जाता है तो वो बंधन का कारण होता है, लेकिन स एव साधुषु कृतो, वही संग किसी भौतिक लाभ हेतु भी अगर किसी भगवान के भक्त का संग किया जाए तो कहते निसंगत्वाय कल्पते। अगर भगवान के भक्तों का संग किसी भी हेतु से किया जाए तो वो मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने वाला हो सकता है। और भगवान के भक्तों का संग इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान के भक्तों का संग हमें कब प्राप्त होता है, इसके लिए मुचकुंद महाराज बहुत सुंदर भगवान का स्तवन करते हुए कहते हैं। जब भगवान कृष्ण ने मुचकुंद महाराज को अपना दर्शन दिया, जिनके दर्शन की लालसा से चीरकाल से वो गुफा में निंद्रा में थे, उनकी एक ही लालसा थी कि मेरी आंखें खुलें तो मैं भगवान का दर्शन पाऊं, बस ये वरदान उन्होंने देवताओं से ले लिया था। और भगवान कृष्ण भी अपनी लीला करते हुए, विशेषकर रणछोड़ की लीला करते हुए है? भगवान ने इस लीला अद्भुत लीला की है? भगवान रण छोड़कर भागे थे, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए काल यवन को मिले हुए भगवान शिव जी के वरदान की रक्षा के लिए, साथ साथ में मुचकुंद महाराज की इच्छा को पूर्ति करने के लिए भगवान रण छोड़कर भागे थे। एक ही लीला में तीन तीन पूर्तियां भगवान ने की। जरासंध ने ब्राह्मणों को कह दिया था कि इस बार अगर मैं युद्ध में पराजित हो गया तो तुम सबका वध कर दूंगा, तुम्हारे आशीर्वाद, तुम कहते हो विजयी भव और मैं परास्त होकर आता हूं। तो ब्राह्मणों ने आकर भगवान से प्रार्थना की कि इस बार अगर उसको आपने हरा दिया, 17 बार हरा दिया था, इस बार अगर हरा दिया तो वो हमको मार डालेगा। वैसे वो ब्राह्मणों का पुजारी था, लेकिन आपका आशीर्वाद निष्फल कैसे हो सकता है, हो गया तो मार डालूंगा। तो भगवान से प्रार्थना की कि आप इस बार कुछ कीजिए। तो वो ब्राह्मण हिताय च, ब्राह्मणों के हित के लिए भगवान ने निश्चय किया अब है? और दूसरा ऐसा सुना है हमने कि जो काल यवन था उसके पिताजी को ऐसा वरदान था कि तुम्हारे पुत्र को रण के मैदान में कोई परास्त नहीं कर सकता। हालांकि कृष्ण परास्त करने में पूर्णतया समर्थ हैं, वो स्वराट हैं, लेकिन फिर भी वो अपने भक्तों के वरदान को अमोघ रखते हैं, जैसे ब्रह्मा जी के वरदान को अमोघ रखा, तो शिव जी के वरदान को भी अमोघ रखने के लिए वे काल यवन के सामने रण छोड़कर भागे। और चूंकि काल यवन इस वरदान के चलते बहुत उद्विग्न हो गया था, और भगवान तो ऐसे खलों का संयमन करने के लिए ही तो अवतरित हुए, तो रणछोड़ की लीला करके मुचकुंद महाराज के द्वारा काल यवन का भी अंत कराया। एक लीला में कितना भगवान ने कितने प्रकार के लीलाओं को संपन्न किया, ब्राह्मणों की रक्षा, शिव जी के वरदान की रक्षा, काल यवन का अंत, और एक और नाम ग्रहण उनको मिला रणछोड़, और उसके साथ साथ मुचकुंद महाराज का उद्धार। तो मुचकुंद महाराज को जब भगवान ने दर्शन दिया काल यवन का अंत के बाद, तो मुचकुंद महाराज ने जान गए, अपने गुरु का स्मरण हुआ और वो जान गए कि यही परम पुरुष भगवान है। तब वे भगवान का स्तवन कर स्तुति करने लगे, और उस स्तुति की बहुत ही उत्तम श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोकों में उन्होंने स्तुति किया, और स्तुति करते हुए वो कहते हैं भगवान के, भवा अपवर्गो भ्रमेत, भवा अपवर्गो भ्रमेत, यह जीव संसार के इस अपवर्ग में भ्रमण कर रहा है, और इस जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रमण करते करते यदा भवे, जब उसके इस भवबंधन का चक्र कटने को होता है, ये भवबंधन से मुक्त होने का होता है, तब क्या होता है, तभी जनस्य तद अच्युत संत समागमम, जब जीव का यह भवबंधन का अंत आने को होता है, तब जनस्य अच्युत तह अच्युत, हे प्रभु जब आपके जनों की, जनस्य अच्युत भगवान के भक्तों की, भगवान के भक्त जनों की संगति होती है, इस प्रकार आप लोग, इस प्रकार भगवान के भक्तों का हम लोग संग करने आते हैं, तो निश्चित अब हमारा जो यह अपवर्ग है ये कटने वाला है, हमारे भवबंधन का अब अंत आने वाला है, इसी जब अंत आने वाला होता है तब भगवान के भक्तों का संगति प्राप्त होता है। तो इस प्रकार भगवान के भक्तों का जो ये संगति है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और भगवान के भक्तों के संग में भगवान की कथा कीर्तन, ऐसा नहीं कि भगवान के भक्तों का संग किया और फिर वह वहां भी गोल गप्पे चालू वही प्रजन, तो पूरा पूरा लाभ नहीं मिल सकता। जब भी भगवान के भक्तों का संग होता है तो जिज्ञासा करनी चाहिए, ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान के बारे में जिज्ञासा, भगवान की लीलाओं के बारे में जिज्ञासा करना चाहिए। तो अब भगवान का भक्तों का संग, और उसके साथ साथ आइए भगवान की दिव्य लीलाओं का हम यहाँ पर श्रवण करते हैं। भगवान की अब तक हमने जन्माष्टमी के बाद ब्रज की लीला का श्रवण कर रहे थे, अब आइए ब्रज से द्वारिका में जाते हैं, और आज एक द्वारिका की बहुत ही महत्वपूर्ण लीला का श्रवण करते हैं। इस लीला का सारांश देते हुए सुखदेव गोस्वामी ने एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक कहा है, एवं स्वम आराध्य लब्ध स्वफलकतनयो मणि आदाय वाच्छा क्षण ददु सूर्यम प्रभम। इस तरह इस अध्याय का सारांश लिखते हुए रूपा जी के कृपा पात्र शिष्य लिखते हैं कि इस अध्याय में हम देख सकते हैं कि किस तरह मूल्यवान मणि ने इतना उत्पात किया है, हिंसा तथा कष्ट उत्पन्न हुआ। यह उन लोगों के लिए निश्चय ही अच्छा सबक है, हम सबके लिए अच्छा शिक्षा है जो बाधा रहित आध्यात्मिक जीवन बिताने के इच्छुक हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा आध्यात्मिक जीवन, हमारा भक्ति बाधा रहित चले, तो उनको इस कथा से यह शिक्षा लेना चाहिए कि वास्तव में भौतिक संपत्ति, भौतिक उपाधि, भौतिक ऐश्वर्य अनित्यता, उसकी अनित्यता, और वह कितना बाधक है, वह कितना उत्पात मचाने वाला है। तो जो लोग भी भगवान का भक्ति करना चाहते हैं, उन्हें भौतिक उपाधियों के पीछे बहुत आसक्त नहीं रहना चाहिए। ये भौतिक उपाधियां या भौतिक संपदा कितना विघ्नटकारी है, यह इस लीला में बताया गया। और दूसरा, जब व्यक्ति के पास भौतिक संपदा आ जाता है, भौतिक ऐश्वर्य आ जाता है, तो वो किस प्रकार भगवान की भी अवहेलना करता है, हैं? और उस अवहेलना के कारण वह किस प्रकार अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मारता है। भगवान की अवहेलना करना अर्थात अपने को संकट में डालना। भगवान जो सभी जीवों के देशी हैं, सभी जीवों के हितेशी भगवान हैं। अगर वे भगवान किसी भी जीव को कुछ आदेश देते हैं या कुछ उपदेश देते हैं, तो वास्तव में वो जीव का परम मंगलकारी होता है। लेकिन जीव भौतिक उपाधियों के चलते या भौतिक आसक्ति के चलते वो भगवान की अवहेलना, अवमानना कर देता है, और जिसके कारण वो अति संकट में पड़ जाता है। या जीव के संकट में या क्लेश में या दुख में पड़ने का कारण ही है भगवान की अवमानना। जीव जो इस संसार में अनेक क्लेशों में घिरा हुआ है, इसका मूल कारण ही है कि उसने भगवान की अवमानना की है, इसीलिए ये सभी संकटों से घिरा हुआ है। अगर वो इस संकटों से, क्लेशों से मुक्त होना चाहता है, तो वास्तव में वो भगवान की शरण ले और भगवान के उपदेशों, आदेशों का पालन करे, तभी उसका मंगल हो सकता है। तो आइए, इस यहाँ कहा गया है कि एक सम्यंतक मणि, जिसके चलते, जो यहाँ पर हमारे आचार्य लिखते हैं कि जिसके चलते, मूल्यवान मणि के चलते इतना उत्पात हुआ और कितना कष्ट उत्पन्न हुआ, साथ साथ में हिंसा हुई, वो तो किस प्रकार ये सब लीला हुई, इसका हम विस्तार से आइए वर्णन करते हैं। यह भगवान जब द्वारिका में रह रहे थे, तो द्वारका लीला का प्रसंग है। सुखदेव गोस्वामी महाराज दीक्षित के जो दसम स्कंद के पहले अध्याय में, पहले स्कंद में जो प्रश्न थे, उसी का उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी ने भगवान के घर गृहस्थी का, कितने रानी के साथ विवाह किया, उसका प्रसंग सुनाते हुए ये प्रसंग आता है। रुक्मणी जी के साथ विवाह होने के बाद का ये प्रसंग। वैसे भगवान का 16,100 कन्या तो जो भोमासुर के द्वारा बंदी बनाई गई, उनके साथ विवाह हुआ, और 108 कन्याएं जो थी, उसमें रुक्मणी जी प्रधान जो हैं, वो 108 जो पटरानी थी, रुक्मणी जी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रवंदा और महाराज मृदराज की 3 कन्या नग्नजीति, सुलक्षणा और सुशीला, ये 8 पटरानियां हुई। इस प्रकार 16,108 के साथ भगवान ने विवाह किया। ये भगवान का गृहस्थी है। भगवान बड़े हैं तो उनका गृहस्थी भी बड़ा है। तो भगवान ने रुक्मणी जी के विवाह की कथा करने के बाद, अब भगवान ने सत्यभामा और जाम्बवती दोनों के साथ जो विवाह हुआ, वो इस सम्यंतक मणि के लीला में हुआ। तो वो किस प्रकार हुआ और किस प्रकार ये सम्यंतक मणि के द्वारा उत्पात हुए, हिंसाएं हुई और कष्ट हुआ, इसका वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सत्राजीत स्वतनया कृष्णाय कृत किल्बिषः सम्यंतकेन मणिना स्वम उद्धम्य दत्तवान। हे महाराज प्रक्षित, सत्राजीत ने स्वतनया अपनी पुत्री और सम्यंतक मणि को कृष्ण को देकर प्रायचित करने का प्रयास किया। क्या प्रायचित? कृष्णाय कृत किल्बिष, कृष्ण के प्रति जो उसने अपराध किया था, कृष्ण की जो अवमानना की थी, अवहेलना की थी, उसका प्रायचित करने के लिए उसने अपनी पुत्री सत्यभामा और साथ में वह सम्यंतक मणि देकर उसका प्रायश्चित करने का प्रयास किया। जब इतना सुखदेव गोस्वामी ने कहा तो महाराज प्रक्षित ने जिज्ञासा प्रकट की कि सत्राजीत किम करोत ब्रह्मण कृष्णस्य किल्बिषः, इस सत्राजी ने भगवान के प्रति अपराध क्यों किया, क्या अपराध किया था है? और सम्यंतक कुतस्य, और ये सम्यंतक मणि कहां से उसको मिला था, कस्मा तथा सुताम हरे, और उसने भगवान को अपनी पुत्री क्यों देने का निश्चय किया, कृपा करके इस को विस्तार से मुझे सुनाइए। जहां भी कृष्ण लीला का वर्णन आया है कि इसमें कृष्ण की कथा है, लीला है, वहां महाराज प्रक्षित बहुत उत्साहित होकर उसको विस्तार से सुनना चाहते हैं। ये श्रोता भी दो प्रकार के होते हैं, कोई कोई श्रोता होते हैं तो ठीक है संक्षिप्त में कहती हूँ, प्रभु जी जल्दी पटा दो, प्रसाद का समय हो रहा है, जल्दी पटा दो। एक इस प्रकार के श्रोता होते हैं और एक प्रकार के श्रोता होते हैं, नहीं नहीं प्रभु जी थोड़ा विस्तार से बताइए, ऐसा आप गोल गोल क्या बता दिया, इसको विस्तार से बताइए, ये भक्तों का रुचि होता है। तो महाराज प्रक्षित ऐसे ही थे, किसी भी कृष्ण कथा को संक्षिप्त में नहीं सुना, उन्होंने विस्तार से सुनने की जिज्ञासा प्रकट की। तब सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि आसित सत्राजित सूर्यो भक्तस्य परम सखा प्रीत तस्मै मणि प्रदात चतुष्ट सम्यंतकम्। हे महाराज प्रक्षित, आसित द्वारिका में सत्राजित नाम के ही एक यादव रहते थे और सूर्यो भक्तस्य परम सखा, वे सूर्य के उपासक थे, सूर्य के भक्त थे, रहते थे द्वारिका में और थे यादव ही, लेकिन किसकी उपासना करते थे? विचार होता है कि कृष्ण भगवान हैं, साक्षात भगवान हैं, उनके कुल में अवतरित हुए हैं और वो सूर्य की उपासना क्यों कर रहे थे, एक होता है ना जिज्ञासा, विष्णु की, नारायण की या कृष्ण की ना करके वो सूर्य की उपासना क्यों कर रहे थे। प्रभुपाद जी इसका उत्तर कृष्ण बुक में देते हैं, काम हस्ते ते ज्ञाना, काम हस्ते ते हत ज्ञाना कधन्ते अन्य देवता, जिनकी बुद्धि या जिनकी आसक्ति संसारिक भोगों के प्रति है, वे लोग उन संसारिक विषयों या भोगों की पूर्ति के लिए प्रपधन्ते अन्य देवता, गीता में भगवान कहते हैं जो लोग संसारिक भोगों के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं, संसार के भोगों को भोगना चाहते हैं, तो वे अन्य अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं, उनको पता है कि इसकी उपासना करेंगे तो उनसे हमको ये मिलेगा, इसकी उपासना करेंगे तो ये मिलेगा, और इस प्रकार मिलने के बाद हम संसार के भोगों को भोग सकते हैं। तो जिनकी बुद्धि काम हस्ते ते हत ज्ञाना, जिनका ज्ञान, जिनकी बुद्धि संसारिक विषयों में आसक्त है, संसारिक भोगों में आसक्त है, वे उन भोगों की पूर्ति के लिए अन्य अन्य देवताओं की उपासना करते हैं। ये इस अध्याय के अंत में हमको ये पता चलेगा, हम जान पाएंगे कि अन्य देवताओं की उपासना, अन्य देवताओं के पास भी जाया जा सकता है, लेकिन क्यों जाना चाहिए, इस अध्याय के अंत में सुखदेव गोस्वामी बताएंगे इस बात को, ये क्लियर हो जाएगा हमारा, अगर कोई हमारे में संशय है तो। तो सत्राजित भी अति कामुक थे, लालची थे, लोभी थे, इसलिए वे सूर्य की उपासना करते थे। और उपासना करते 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 उन्होंने इतना सूर्य देव का उपासना किया कि वे उसके मित्र बन गए, हैं? परम सखा, परम मित्र बन गए सूर्यदेव के। और सूर्यदेव ने अपने मित्र की प्रसन्नता के लिए प्रीतस्तस में, उनके फ्रेंडशिप की प्रसन्नता के लिए, दोस्ती में, प्रदात चतुष्ट, उनको तुष्ट करने के लिए उन्होंने अद्भुत सम्यंतक मणि प्रदान किया अपने मित्र को, अपने भक्त को। जब वो मणि उनको मिल गया तो सत्राजित ने, आज कोई भी व्यक्ति जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, अगर उनको कोई भौतिक संपदा मिलती है तो वो दिखाना चाहते हैं, संसार हमारे पास ये है, अरे नहीं होता तो लोग दिखाना चाहते हैं, कलयुग में तो नहीं है कुछ भी तो भी बाहर निकलते हैं तो है? हमारे गांव के पास एक क्षत्रिय थे, लेकिन राजपाट सब चला गया, कंगाल हो गए, लेकिन फिर भी वो घर के बाहर बैठते थे तो मूंछों पर घी लगाकर बैठते थे। ओ, तो एक दिन क्या हुआ, घी घर में नहीं था तो उसने वो भगवान को कोई दीपक जलाया होगा, उसका दीवट पड़ा था तो उसमें से वो घी निकाल के ऐसा लगा, ये बिल्कुल सत्य घटना बता रहा हूं, तो वो रुई का दीवट था वो इधर चिपक गया और बाहर होटले पर आकर बैठ गए, आज पटरानी ने बहुत घी खिला दिया, ऐसा कर रहे थे। तो वो सामने वाला व्यक्ति, अरे आपके ये क्या चिपका है, ये तो भगवान के दीपक का वो दिया जलाई का रूह है। अरे बाप रे, तो ऐसा करके मुंह में खा गए, बोल ना तुम। तो लोग नहीं है तो भी दिखाना चाहते। फिर वो मर गए, तो मर गए तो वो गांव में जलाते, बारिश का मौसम होगा इन दिनों में मरे तो वो जल नहीं रहे थे, तो किसी ने कहा कि घी डालो, घी डालो। तो एक व्यक्ति ने कहा घी होता तो मरते भी नहीं, अभी कहां, लेकिन जो नहीं होता तो वो भी दिखाना चाहते हैं, इसको दंभ कहते। तो सत्राजित को तो मिल गया तो उसने तो तुरंत अपने गले में चैन बना के उसमें डाल दिया पेंडल की तरह, और डालकर द्वारका वासियों को दिखाने के लिए द्वारका में प्रवेश किया। तो वो जो मणि था अद्भुत मणि था, वास्तव में अद्भुत मणि था, उससे इतना प्रकाश निकल रहा था, इतना प्रकाश निकल रहा था कि दूर से देखने से पता नहीं चल रहा था कि ये कौन आ रहा है, पीछे आदमी है या प्रकाश में, कभी कभी बहुत तेज प्रकाश होता है ना तो पता नहीं चलता कि इसके पीछे कौन है। तो द्वारका वासियों ने सोचा कि ये सूर्य देव आ रहे हैं भगवान को मिलने के लिए, क्यों, क्योंकि द्वारकावासी जानते थे कि कृष्ण साक्षात विष्णु है, नारायण है, और उनको मिलने के लिए कभी ब्रह्मा जी आते हैं, कभी शिव जी आते हैं, नारद जी भी आते हैं, देवता भी आते हैं, तो आज हमारे प्रभु को मिलने के लिए सूर्य नारायण आ रहे हैं। उन्होंने ये सोचा और एक यादव भाग कर कृष्ण के भवन में गया और जाकर उनको सूचना दिया। उस समय कृष्ण चौपट खेल रहे थे और जाकर सूचना दिया कि प्रभु प्रभु नारायण नारायण नमो अस्तुते, हे प्रभु, हे सारे जीवों के आश्रय, हे क्षीर सागर में शयन करने वाले प्रभु, आपको नमस्कार है, शंख चक्र गदाधर, आप वही विष्णु हैं जो शंख चक्र गदा धारण करते हैं, लेकिन आपने यशोदा के पुत्र के रूप में लीला करने के लिए व्रज में अवतार लिया, और व्रज में अवतार लेने के बाद माता यशोदा आपको कभी कभी दोरी से बांध लेती थी, इसलिए आपका नाम दामोदर पड़ा, दामोदर अरविंदाक्ष, दामोदर इस प्रकार की मधुर मधुर लीला करके आपने सबको आनंद प्रदान किया, हे कमल नयन और गोविंद, हे गो गोपी और गोपों को आनंद प्रदान करने वाले। और फिर बताते हैं हमारे संबंधी यदु नंदना है, यादवों के साथ घनिष्ठ संबंध के कारण वो कहते हैं यदु नंदना, आपने यादव कुल में भी जन्म लिया है लेकिन आप हैं नारायण। और इस प्रकार ऐसा आयाति सविता, सविता कहते हैं सूर्य को है, गायत्री मंत्र में ये सविता शब्द आता है, सूर्य, वो सविता शब्द सूर्य के लिए आया है। तो आयाति सविता त्वाम दिद्रक्ष जगतपते, हे जगत के पति, सभी देवताओं के भी स्वामी, जगत के स्वामी जगन्नाथ, आपकी देखने की लालसा से सविता सूर्यदेव आ रहे हैं, हैं? तब भगवान ने भगवान हंसे, उसके वचन सुनकर भगवान मुस्कुराए, निशम्य बाल वचनम, बालको जैसा वचन। अरे वो सूर्यदेव नहीं है, वो तो सत्राजीत है और गले में मणि धारण करके आ रहा है, वो नहीं। निशम्य बाल वचनम प्रहा ना तो रवि देव सत्राजीत मणिना ज्वलन, वो तो सत्राजीत ने मणि डाला है, उसका प्रकाश है, वो सूर्यदेव नहीं है, वो तो सत्राजीत है। तो इस प्रकार सत्राजीत ने द्वारिका में प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद उसने उस मणि को अपने घर में एक मंदिर बनाकर उसमें रख दिया और उसकी पूजा करने लगा। किस प्रकार भौतिकवादी लोग भौतिक लाभ के लिए इन भौतिक वस्तुओं का पूजा करते हैं, हम देखते हैं कभी कभी, किसी का कोई किसी का पूजा कर रहा है, कोई कुछ कुछ वस्तु रखता है, ये सोपारी मंत्रा हुआ है, ये नारियल मंत्रा हुआ है, इसका पूजा करते हैं लोग, भगवान का नहीं करते हैं और उसका करते हैं, बहुत बहुत वस्तुओं का हमने देखा है कई लोगों के घर में, ये प्रभु जी क्या, ये एक बाबा जी ने दिया है और उसका आरती करते हैं, भगवान का आरती नहीं करते। हालांकि वो वस्तु भी भगवान की ही है, लेकिन ये कामुक लालची व्यक्ति, भौतिक आसक्त व्यक्ति, या जिनका ज्ञान माया के द्वारा, माया अपहत ज्ञाना, तो वो उनका पूजा करने लगा। क्यों पूजा करने लगा? क्योंकि उस मणि का ये गुण था। क्या गुण था? दिने दिने स्वर्ण भान अस्तो सृजति प्रभु। हे महाराज परीक्षित, वह मणि ऐसा था कि दिने दिने स्वर्ण भारान अष्टो, पहले के समय में जो माप तोल था वो भार पे होता था, भार। रूपा जी ने बहुत सुंदर इसका लिखा कि भार मतलब क्या होता है, चार चावल दाने को एक गुंजा कहते हैं, पांच गुंजा के बराबर एक पण होता है, आठ पण के बराबर एक कर्ष होता है, कर्ष मेरे को लगता है वो सिरमी आता है उसको कहते हैं, और चार कर्ष के बराबर एक पल और 100 पल के बराबर एक तोला और 20 तोला के बराबर एक भार, ये गणना है, भार वजन की गणना है। इसी प्रकार समय की भी गणना है, भागवतम के तीसरे स्कंद में समय कैसे बनता है, तो 20 तोला, तोला में समझते हैं आपको, 20 तोला के बराबर एक भार, तो वो जो मणि था वो दिन में 8 भार मतलब 160 तोला सोना प्रकट करता था, लेकिन कब, जब उसकी यत्र अर्चयितो मणि, जहां उसकी पूजा हो, उसको अगर बराबर से उसकी पूजा की जाए तो वो मणि अब उसके चारों तरफ 160 तोला सोना स्वतः प्रकट हो जाता था, और दुर्भिक्ष वो जहां भी उसकी पूजा होती थी वहां कहीं अकाल मृत्यु नहीं होता था, और अकाल मृत्यु नहीं होता था, सांप आदि काटने का भय नहीं रहता था, कोई व्याध आदि नहीं था, मानसिक चिंता नहीं होती थी, व्याधि शारीरिक रोग नहीं होता था और कोई भी अशुभ कार्य नहीं होता था अगर उसका वहां पूजा किया जाए। संति मयन तस्त्र यत्रा, ये सब होता था, कोई भी अकाल मृत्यु नहीं, अकाल नहीं, सांप डसेगा वो भय नहीं, साथ साथ में कोई मानसिक चिंता नहीं, शारीरिक रोग नहीं या कोई भी अशुभ कार्य नहीं हुआ। देखिए ये मणि का प्रभाव, जबकि ये मणि के चलते ये सब हुआ, अकाल मृत्यु भी हुआ, अशुभ भी हुआ, सब कुछ हुआ। तो इसमें ये रूपा जी लिखते हैं कि जो भौतिक संपदा है उसकी अनित्यता, नश्वरता इसमें प्रकट होती है। तो इस प्रकार सत्राजीत उसकी अर्चना करने लगा, पूजा करने लगा। एक दिन भगवान ने सत्राजीत को बुलाकर कहा, क्या कहा? स याची तो काफी यदा जाए शौरिणा, शौरिणा सूर के पुत्र महाराज उग्रसेन, यदुराजा है उग्रसेन के लिए आया है। कृष्ण ने कहा कि हे सत्राजीत, आप ये मणि राजकोष में जमा करा दो। रूपा जी ने लिखा, क्यों भगवान ने ऐसा कहा? भगवान यह दिखाना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के पास अगर कोई बहुत कीमती वस्तु है या ऊंची वस्तु है तो उसको राज खजाने में प्रदान करना चाहिए। आजकल तो हम ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि आज तो जानते हैं राजा ऐसे नहीं, लेकिन पहले के समय के जो राजा थे वो नरदेव कहते थे और भगवान के प्रतिनिधि के रूप में राज्य चलाते थे हैं? और जनता की रक्षा करते थे। तो भगवान ने कहा कि तुम ये मणि राज खजाने में जमा करा दो, भले ही इससे निकलने वाला सोना आप लेते रहना लेकिन मणि को राज खजाने में जमा करा दो। भगवान ये सब जानते थे हैं? हम जानते हैं अगर किसी के पास बहुत कीमती वस्तु है तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। हमने एक सुना था कि एक व्यक्ति के पास बहुत कीमती हीरा था, अभी 2-3 साल पहले की बात, और उस हीरे के चलते वो बहुत परेशान हो गया, उसको खतरा लगने लगा कि मेरा मर्डर करके ये हीरा कोई ले सकता है, अतः क्या किया जाए क्या किया जाए। तो वो परेशान होकर उस हीरे को उसने तिरुपति बालाजी के भंडारे में डाल दिया और वो चिंता से मुक्त हो गया। तो ये कारण था, आपके पास कोई भारी कीमती वस्तु है आपके लिए खतरा है। तो ऐसे तो सत्राजीत की रक्षा के लिए भगवान ने कहा कि आपके लिए खतरा हो सकता है, आप ये मणि, जाए श्री श्री राधा गिरधारी जी की जय, नाथ मणि राज खजाने में जमा करा दो, यही ठीक रहेगा। लेकिन उसने क्या किया, नेवा अर्थे कामुक, अर्थ का अर्थ है धन के प्रति, वो बहुत कामुक था, लालची था, इसलिए प्रादा यांचा भंगतम अतर्कयन। बहुत महत्वपूर्ण यहां पर सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, वो लालची व्यक्ति था, लोभी व्यक्ति था, कामुक व्यक्ति था, इसलिए उसने प्रादा यांचा भगवान की याचना को भंगम भांग दिया, तोड़ दिया, अस्वीकार कर दिया, अतर्कयन बिना किसी तर्क के, बिना किसी विचार किए, बिना किसी विचार किए भगवान की इस याचना को उसने नकार दिया। कोई विचार ही नहीं किया कि ये कृष्ण क्यों मांग रहे हैं, या पूछ लेते कि भाई मैं रखूंगा तो क्या प्रॉब्लम है, क्यों आप वहां देना चाहते हैं, क्या है। कुछ भी विचार किए बिना भगवान के आदेश या भगवान की याचना को ठुकराना नहीं चाहिए। गीता में भगवान ने बहुत बहुत आदेश हमको दिया है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, या सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये गीता में भगवान ने एक प्रकार से हमसे डिमांड किया है, लेकिन कुछ लोग इसको स्वीकार नहीं करते, नकार देते हैं। अतर्कयन कुछ विचार किए बिना, कुछ तर्क किए बिना, कुछ सोचे समझे बिना लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि भगवान कृष्ण का शरण लेना चाहिए, भगवान का भक्ति करना चाहिए, भगवान का सेवा करना चाहिए। इस बात को बिना किसी विचार किए नकार देते हैं और अपने पतन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भगवान की वाणी जो है वो वेद वाणी है, भगवान का आदेश जो है वो वैदिक आदेश है। हम लोगों ने सुना कृष्ण अवतार की कथा में, जब बलराम जी देवकी जी के गर्भ में आए तो भगवान कृष्ण ने वैकुंठ में योग माया को बुलाया और योग माया को बुलाकर आदिष्टो आदेश दिया, गच्छम देवी वज्रम भद्रे, हे देवी ब्रज में जाओ और वहां मेरा अंश देवकी के गर्भ में है उसको वहां लेकर सम्यक रूप लेकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। जब भगवान ने यह आदेश दिया तो देवी जी ने कहा ओम इति, क्या कहा, ओम इति, हां प्रभु मैं ये करूंगी। तो ओम इति का क्या अर्थ है, ओम इति इसलिए कह रहे कि प्रभु आपका जो आदेश है वो वैदिक आदेश है, आपने जो आदेश दिया है वो वैदिक आदेश है। ओम लगाकर वो देवी जी ये कह रहे हैं कि आपका जो आदेश है, आपका जो उपदेश है, आदेश है, या आपके वाणी है, आपके मुखारविंद से निकला हुआ शब्द जो है वो वेद वाणी है, इसलिए मैं ये करूंगी। अब देवी जी ये कह रही हैं और यहां पर ये सत्राजीत या हमारे जो कामुक लोग हैं, लालची लोग हैं, संसार में बहुत आसक्ति, वे लोग अवहेलना करते कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, हाँ नहीं हमको टाइम नहीं, हम जप नहीं कर सकते, हम मंदिर नहीं आ सकते, हम ये नहीं कर सकते, इस प्रकार भगवान की बातों को अवहेलना करते हैं बिना विचार किए। विचार करना चाहिए, ये बहुत ही कम समय हमको प्राप्त हुआ है, बहुत ही छोटा है मनुष्य जीवन, और इसमें भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए हमको तत्पर और उत्साहित रहना चाहिए। आयु बहुत कम है, कभी भी हम जा सकते हैं, इसलिए ऐसा नहीं कि बाद में करेंगे, नहीं अभी पालन कर लेना चाहिए, भगवान का भक्ति कर लेना चाहिए, भगवान के आदेशों का पालन कर लेना चाहिए, उसका अवहेलना नहीं करना चाहिए। लेकिन ये नेवा अर्थ काम, ये लालची था, बहुत ही कामुक था, लोभी था, संसारिक विषयों में आसक्त था, इसलिए इसने भगवान की बातों को बिना विचार किए ठुकरा दिया। और जब ठुकरा दिया तो दूसरे ही दिन तम एकदा मणिकंठे प्रतिमुच्य महाप्रभम प्रसन्ने, उसका भाई प्रसन्न अब जंगल में शिकार खेलने जा रहा था। तो जंगल में शिकार खेलने जा रहा है तो मणि का क्या काम है जंगल में, वहां तो जानवर है, किसको दिखाएगा। लेकिन जो दिखावा करना चाहते हैं वो तो सर्वत्र दिखावाई करते हैं, कुछ ना कुछ दिखावा वो गले में डाल दिया और गले में डालकर गया शिकार करने। जैसे घोड़े में बैठकर जंगल में गया वो लौटा ही नहीं, वो वापस नहीं आया। एक दिन बीता, दो दिन बीता, तीन दिन बीता, वो वापस आया नहीं। जब वापस नहीं आया तो सत्राजीत ने सोचा, विचार किया कि ये मणि कृष्ण मांग रहा था लेकिन मैंने दिया, इसलिए ये कृष्ण ने मेरे भाई को मारकर मणि ले लिया, ये कृष्ण पहले से ऐसा ही है। अंत में सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि कृष्ण जब अवतरित होते हैं, 57वें अध्याय के 42वें श्लोक में कहते हैं कि जब कृष्ण अवतरित होते हैं तो उनके समकक्ष लोग ही उन पर कई प्रकार के आरोप लगाते हैं, ये कृष्ण पर कई प्रकार की उनकी अवहेलना करते हैं, आक्षेप करते हैं कृष्ण को, कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने वो किया। अभी उनके जब वो थे तभी लोग आक्षेप लगाते थे, तो आज की प्रजा तो फिर आक्षेप करे तो क्या ना भाई, कोई हंसी की बात नहीं। तो इस प्रकार जब नहीं आया तो वो सोचने लगा सत्रह जी, ये कृष्ण का काम है, कृष्ण ने हमारे भाई को डाला और मणि ले ली, ये पहले से ही चोर है, ऐसा ही काम करता है, फेमस है, चोरों का राजा। तो इस प्रकार कृष्ण के सामने तो कहने की हिम्मत नहीं थी, वो जानता था ऐसे तो कृष्ण को कि ये बहुत खतरनाक आदमी है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है ये, इसको सामने तो कहने का हिम्मत नहीं था। लेकिन उनके पीछे इस प्रकार कानाफूसी करने लगा, उसने उसको बताया, उसने उसको बताया, उसने इसको बताया, इस प्रकार पूरे द्वारिका में कानाफूसी होने लगा, कहीं चौराहे पर, कहीं गोतले में, कहीं माताजी इकट्ठा होकर बैठे, हे तुमको पता है क्या कृष्ण ने ऐसा किया है, इस प्रकार कानाफूसी होने लगा धीरे धीरे। और होते होते वो बात कृष्ण के कान तक पहुंच गया। जब कृष्ण के कान तक पहुंच गया तो कृष्ण ने लगा, भ्राता मामेति त्रच्छुत्वा करणे कर्ण जपन धना, अजपन, अजप, इसको अजप कहते हैं, एक कृष्ण के नाम का जो करते हैं उसको जप कहते हैं, और ये कृष्ण के विरुद्ध बात हो रही है, इसको अजपन, अजपन होने लगा। और कृष्ण ने भी इस बात को सुन लिया। जब कृष्ण ने इस बात को सुना तो कृष्ण तो जानते थे अपने ऊपर इस लगे हुए कलंक को, मिथ्या कलंक को दूर करने के लिए उन्होंने सभी द्वारका वासियों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहा चलो मेरे साथ चलो, और वो वहां ले गए जहां प्रसेन जंगल में गया था, वहां लेकर गए और वहां ले जाकर दिखाया कि घोड़ा मरा पड़ा, जिस घोड़े पर प्रसन्न गया था, उस पर प्रसन्न गया था, वो घोड़ा मरा पड़ा है, और उससे वहां कुछ निशान पड़े हैं पांव के, उससे पता चल गया कि सिंह ने, एक सिंह ने घोड़े समेत प्रसन्न की हत्या कर दी, और वो मणि सिंह ले लिया, और लेकर देखा सिंह के पास, तो वो एक गुफा में चला गया। तो कृष्ण ने सबको दिखाया कि देखिए मेरे पर ये गलत आदेश लिखा है, इसको प्रश्नेन को सिंह ने मारा है और सिंह इसी गुफा में गया है, तो आप लोग बाहर खड़े रहिए। क्यों? क्योंकि जो वो गुफा था, वो गुफा जो था बहुत ही घातक, बहुत ही भयावह गुफा था, पहाड़ का गुफा बहुत भयावह था। इसलिए द्वारका वासियों को कहा कि आप यहाँ खड़े रहिए, मैं अंदर जाके पता लगाता हूँ कि क्या हुआ फिर उस मणि का। तो इस प्रकार अंदर ना अंदर गए, उस गुफा में प्रवेश किए। उस गुफा में जब प्रवेश किए तो वो जो गुफा था, वो उस गुफा में उन्होंने देखा अंदर प्रवेश करके कि एक दाई, एक स्त्री अपने बच्चे को झूला रही है और झूला गा रही है, और उस बच्चे के हाथ में वो मणि है और वो बच्चे को झूला रही, झूलाती झूलाती झूला गा रही है। बच्चे को रो रहा था बच्चा, तो मणि दिया शांत करा और उसको सुलाने के लिए वो सांत्वना देती हुई गाती है, सिंह प्रश्नेन वधितः सिंहो जांब बता हतः सुकुमारक मा रोदित्व होशम तकतव। हे सुकुमार रो मत, शांत हो जाओ, ये जो सिंह था उसने प्रश्नेन का हत्या कर दिया, सिंह ने प्रश्नेन को मार दिया और सिंह को जांब बता, जांबवान ने सिंह को मार दिया। अब ये जो मारोदित, रो मत, क्यों? होश सम्यंतक, ये जो सम्यंतक मणि है अब ये तुम्हारा है, अब हंसो रो मत। इस प्रकार लोरी जा रही थी और कृष्ण ने जाकर देखा कि ओहो ये मणि इसके पास है, तो कृष्ण देखवा तत्र दृष्टवा मणि प्रेष्टम बाल क्रीडनम कृतम, वो मणि के साथ बालक खेल रहा है। तो उस मणि को प्राप्त करने के लिए कृष्ण जैसे ही दौड़े तो वो दहाई थी, वो बहुत जोर से चिल्लाई है, चुक्रोश भीतवत, चुक्रोश बहुत जोर से चिल्लाई, क्यों चिल्लाई? भीतवत, भयभीत होकर चिल्लाई, और तर छुत्वा अभद्र क्रुदो जांबवात बलिनाम वरा। उस दहाई के चिल्लाने की आवाज सुनकर बलि जांबवात, जांबवान बलिनाम, वो जांबवान जो सभी बलवानों में श्रेष्ठ हैं, बलिनाम वर, सभी बलवानों के वर हैं, सभी बलवान जितने भी संसार में सब में बल, जो जांबवान है वो बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है, बहुत ही बलवान व्यक्ति, जांबवान बलिनाम वर। त्रछुत्वा उन्होंने उसकी चिल्लाने की आवाज सुनी तो वो भाग कर कैसे आए, क्रोधो, क्रोधित होकर आए, कौन है ऐसा जो हमारे भीतर आकर ऐसा कर रहा है, क्यों? वो बहुत बलवान थे इसलिए क्रोधित हो गए उसकी चीख सुनकर, और बाहर आए और सवे भगवता ते युयुधे स्वान आत्मिना, स्वाम स्वामी आत्मिना, अपने स्वामी को देखकर भी क्या किया, पुरुषम प्राकृतम मत्वा, अपने स्वामी को देखकर भी वो समझ नहीं पाए और पुरुष प्राकृतम, उनको प्राकृत पुरुष समझा, ये कोई साधारण व्यक्ति है, हैं? और कुपितो ना अनुभावित, और वो उन पर कुपित हो गए, क्रोधित हो गए। प्रभुपाद जी ने इस पर बहुत तात्पर्य लिखा, बहुत सुंदर कृष्ण बुक में, कि जांबवान क्यों अपने स्वामी को, इतने महान भक्त होकर क्यों नहीं पहचान पाए और प्राकृत पुरुष क्यों समझे। तो यहां त्रछुत्व क्रोधो, दो कारण दिया प्रभुपाद जी ने, कि पहला कारण है कि वो क्रोध में थे, और कोटेशन देते हैं प्रभुपाद जी कि गीता में भगवान कहते हैं कि काम क्रोध ये तीनों वस्तुएं हैं आध्यात्मिक उन्नति में बाधक हैं, घातक हैं। जो भी भगवान का भक्ति करना चाहते हैं उनको काम क्रोध और लोभ से मुक्त होना चाहिए, नहीं तो भक्ति करते हुए भी वो भगवान को नहीं जान सकते। जांबवान जो थे क्रोध में थे, दूसरी बात उनको लगा कि ये हमारे बच्चे का मणि छीनने आया है, तो बच्चे के प्रति भी आसक्ति था, मणि के प्रति भी वो आसक्ति, तो भौतिक आसक्ति का आवरण होने के कारण वो भगवान को समझ नहीं पाए और सामान्य पुरुष समझा। हालांकि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं स्वामीन आत्मना, वो उनके स्वामी थे, वो उनके स्वामी राम ही थे, लेकिन भौतिक आसक्ति का आवरण और क्रोध लोभ मोह भौतिक आसक्ति जहां भी है वो भगवान को नहीं पहचान सकता। ये बहुत बड़ी शिक्षा है भक्तों के लिए। हम भक्ति करते हैं लेकिन जब तक हमारे अंदर ये तीन अनर्थ हैं हम भगवान को नहीं समझ सकते, नहीं देख सकते। ये शिक्षा देने के लिए इस प्रकार के प्रश्न। प्राकृत पुरुष समझा किसने? बलि जाम्बवान बलिनावर। जाम्बवान बहुत बलवान थे। हाँ, एक तो बलवान का यही उनका प्रसंग मिलता कि वो सिंह को जो मारे थे तो सिंह को किसी हथियार से नहीं मारा, अपने मुष्टिका से मार दिए थे। ऐसे बिना किसी हथियार से उस सिंह को वध मार दिया था। इसलिए भगवान ने जब उनको संबोधित किया तो ऋक्षराज, हे ऋक्षराज वनराज, हैं हे वन के राजा। वन का राजा सिंह होता है लेकिन भगवान ने उनको सिंह का राजा कहा युद्ध के बाद। वन का राजा कहा, तुम वन के राजा हो क्योंकि वन के राजा सिंह का तो हत्या तुमने कर लिया, मतलब तुम हो गए ना राजा। जब किसी राजा का हत्या कोई पर पुरुष कर देता है, हैं उसका विरोधी, तो फिर वो राजा माना जाता है। तो इतने बलवान थे कि सिंह को बिना किसी हथियार के मार दिया। और भी बलवान, जाम्बान बहुत बलवान थे। जब अयोध्या लंका जाना था समुद्र को पार करके, तो भगवान ने कहा कि कौन जाएंगे, लेकिन हनुमान जी को ये सेवा दिया गया। तो हनुमान जी तट पर खड़े खड़े विचार कर रहे थे, इतना बड़ा समुद्र लांग कर कैसे जाएंगे, ऐसा विचार। जाम्बान पास में खड़े थे, वो जान गए कि ओ, तो उन्होंने हनुमान जी को कहा, अरे हनुमान, तुम्हारी उम्र के जब हम थे तो जब वामन देव ने अपना विश्व रूप जब अपने अपना विस्तार किया था और दो कदम में ही अपने विश्व पूरे विश्व को अपने अंदर भर लिया, इतना बड़ा रूप बनाया था, तो मैंने उस रूप का 108 बार परिक्रमा किया। तुम एक समुद्र लागने में क्या घबरा रहे हो, क्या विचार कर रहे हो? हाँ, भगवान ने अपना बहुत उरुक्रम जब तीनों लोगों को मापा था, तो भगवान कितना लंबा हुआ होंगे, कितना बड़ा हुए थे, पूरा विश्व उनके अंदर समा गया था, तीनों लोग को उन्होंने आवृत कर लिया था। तो तीनों लोगों को आवृत करने वाला भगवान का वो शरीर कैसा हुआ होगा, कितना लंबा होंगे भगवान? अभी एक समुद्र क्या, ऐसे लाखों समुद्र आ गए अंदर, पूरा तीनों लोक 14 भवन उसके अंदर आ गए, तो भगवान का कितना बड़ा कद हुआ होगा। मैंने उस परिक्रमा किया था और तुम एक समुद्र लांघने में विचार कर रहे हो। इतना सुनते ही हनुमान जी ने जय श्री राम। ऐसे भगवान की सेवा में भक्तों को उत्साहित करना चाहिए, निरुत्साहित नहीं करना चाहिए। कोई भी भक्त है तो कहता है नहीं नहीं हमसे तो इतना जप नहीं होता है, तो उनको उत्साहित करना चाहिए। अरे क्या जप नहीं हो रहा है, अरे लोग 64 माला करते, तुम 16 क्या इतना विचार कर रहे हो 16 माला में? है हमारे मंदिर में कई भक्त हैं जो 64 करते हैं कि नहीं? तुम 16 माला में क्या घबरा रहे हो? हाँ, 64 तो 16 तो कम से कम करना चाहिए ना। ऐसा भक्तों को उत्साह देना चाहिए, ये भक्त का कर्तव्य है। भगवान की सेवा के लिए हनुमान जी को उत्साहित किया। और इस प्रकार जाम्बवान बलवान वरा, इतने बलवान थे, इतने बलवान होने के कारण अब उसने भगवान के साथ युद्ध करने, क्यों आई यहां पर, क्रोधित होकर भगवान पर युद्ध करने की तैयारी करने लगी। तो वहां पर द्वंद युद्ध चालू हो गया। द्वंद युद्ध मतलब जोड़ी का युद्ध, बहुत महत्वपूर्ण है, ये समय नहीं है इसलिए, लेकिन द्वंद युद्ध जोड़ी का युद्ध। सु तुम लोग भयो विजि विजिषित तो हो, दोनों पक्ष विजय की कामना से मैं इसको प्राप्त कर दूंगा। कृष्णा सोच रहे मैं इसको प्राप्त कर दूंगा, जाम्बान सोच रहे मैं इसको प्राप्त कर दूंगा, ये कामना लेकर दोनों आपस में भिड़ गए। भिड़े तो युद्ध चालू हुआ, पहले आयुधा, पहले अस्त्र जो उनके पास थे उससे युद्ध करने लगी। युद्ध करते करते सारे अस्त्र टूट फूट गए, चकनाचूर हो गए। तो फिर अश्वम, अब युद्ध करते करते सारे अस्त्र नष्ट हो गए, अश्वम पत्थरों को उठाया, बड़े बड़े पत्थर कृष्ण ने भी उठाया जाम्बान ने भी, और एक दूसरे पर मारने लगे। अब मारते मारते पत्थर भी खत्म हो गए, तो द्रुमो, द्रुमो कहते हैं वृक्ष को, वृक्ष को उखाड़ कर उठाने लगे हैं गुफा से और एक दूसरे पर वृक्ष का प्रहार करने लगे। अब वृक्ष भी खत्म हो गए तो दो इंद्रो भी वृक्ष की डालियां कोई लकड़ियां बची होगी तो वो लकड़ी लेकर एक दूसरे पर तो वो भी टूट फूट चकना चूर हो कव्या अर्थे सनो ईर्विथप इस प्रकार लड़ने लगे। काव्या अर्थे शयन यो रिव जैसे किसी मांस के टुकड़े के लिए दो सिंह दो गीद लड़ते। सम्यंतक मणि को बहुत ही उपाधि दिया उस सम्यंतक मणि के लिए या जैसे एक मांस के टुकड़े के लिए दो बाज आपस में भिड़ते हैं इस प्रकार ये दोनों आपस में भिड़ गए। और जब पत्थर से भी युद्ध पत्थर भी खत्म हो गए झाड़ भी खत्म हो गए आयुध भी खत्म हो गए तो अब द्वंद्व युद्ध चालू। द्वंद्व का अर्थ जोड़ी का युद्ध जैसे सामने वाला है वैसा ही ये भी। ऐसा नहीं कि सामने वाले के हाथ में धनुष बाण है तो ये और कोई ब्रह्मास्त्र चला दे ऐसा नहीं। जिस शस्त्र से वो युद्ध करता वो निशस्त्र है तो ये भी निशस्त्र। जब कोई शस्त्र नहीं बचा तो कृष्ण भी बिना शस्त्र हो गए। तो अब मुष्टिका प्रहार एक दूसरे पर मुष्टिका प्रहार अपने बाहुओं से प्रहार करने लगे। प्रहार करते करते इस प्रकार 28 दिन निरंतर युद्ध चला और 28 दिन युद्ध चलने के बाद कृष्ण मुष्टि विनिष्पात निष्पिता गोरु बंदना कृष्ण के मुष्टि प्रहारों से जांब बन गई सब मांसपेशियां बिल्कुल शिथिल हो गई और जांबान को लगने लगा कि मेरी जो बल है वो हत होते जा रहा मैं बलहीन होते जा रहा हूं। अरे ये कौन व्यक्ति है जो हमारे बल को क्षीण कर दिया हमारे बल को क्षीण कर दिया ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है। क्षीणस्व सुन गात्र अपने हस्ती विस्मित वो विस्मित हो गए ये कौन हो सकता है जो हमारे बल को क्षीण कर दिया बिल्कुल बलहीन हो गए अब प्रहार करने का शक्ति नहीं था। और जब प्रहार करने का शक्ति नहीं था जाने त्वम सर्वभूतानाम प्राण ओजस हो बलम बहुत सुंदर स्थिति जाने त्वम मैं आपको जान गया जाने त्वम सर्वभूतानाम आप सभी जीवों के प्राण और ओज शक्ति और बल के आप स्रोत हैं। सभी जीवों का बल सभी जीवों की शक्ति सभी जीवों का प्राण के स्रोत ही आप हैं। विष्णु पुराण पुरुषम आप ही विष्णु स्वरूप व्यापक भगवान हैं और आप ही आदि पुरुष हैं। प्रभु विष्णु अधीश्वरम और आप ही सबके स्वामी मैं जान गए कब जान गए जैसे कालिया ने जाना ना कालिया भगवान ने जब कालिया के फन पर नृत्य किया तो भगवान ने ऐसे ऐसे अपने चरणों को मार मार कर उसका फणों को तोड़ दिया सारा विष निकल गया। और जब सारा विष निकल गया फिर भी कृष्णा नाच रहे थे तो अब रक्त निकलने लगा। अब विष भी निकल गया रक्त भी निकल गया। अब रक्त निकल जाता है तो आदमी कमजोर हो जाता है। तो कालिया ने सोचा कि अब तक तो हमारा विरोधी पक्ष में समझ रहा था कि गरुड़ ही शक्तिशाली है और वो ही हमारा विरोधी है और उससे शक्तिशाली और कोई नहीं लेकिन ये तो गरुड़ का भी बाप दिखता है। तो वो समझ गया कि ये भगवान के सिवा और कोई नहीं है। वास्तव में आदमी के पास जब तक कुछ बल रहता है धन का या पद का या कुछ उपाधियां रहती है तब तक वो भगवान को नहीं समझता है। वो जब भगवान को समझ तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस उपाधियों के कारण जीव भगवान की अवहेलना करता है समझ नहीं पाता है। तो कृष्णा कभी कभी क्या करते हैं कि उसका सब कुछ हर लेते बल भी हर लिया शक्ति भी हर लिया धन भी हर लिया तब वो कृष्णा हाँ ये भगवान तब वो कृष्णा की शरण में आता है। कभी कभी कृष्णा ऐसा करते हैं। तो जामबान का जब बल हर लिया गया तब जामबान समझे कि ये तो भगवान। ये प्रश्न होता है कि समझो जामबान तो नहीं समझ पाए लेकिन कृष्णा तो जानते थे कि ये हमारा भक्त है उन्होंने क्यों युद्ध किया उन्होंने क्यों ऐसा किया बताया नहीं दिया कि मैं ही वो राम हूं तुम्हारा भगवान उन्होंने उनके साथ इतना मारामारी क्यों किया और इतना प्रहार किया कि उनके सारे हड्डी पसली बिल्कुल टूट गई क्षीण हो गई भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान ने ऐसा इसलिए किया कि भगवान भी अपने वीर रस का स्वादन करना चाहते थे, और भगवान जब भी अपने वीर रस का स्वादन करना चाहते हैं तो उनके सामने कोई संसारिक व्यक्ति नहीं टिक सकता, वे अपने भक्तों की शयन कर, जैसा जय विजय का शयन किया। जय विजय ने जान लिया कि भगवान अपने वीर रस का स्वादन करना चाहते हैं, तो जय विजय विचार करने लगे कि भगवान अगर अपना वीर रस का स्वादन करना चाहते, अपनी शक्ति से संतुष्ट की प्राप्त सुखी होना चाहते हैं, तो भगवान के सामने कौन टिक सकता है। लेकिन भगवान की कृपा से हमारे अंदर ये योग्यता है, इसलिए हम दोनों भगवान के इस इच्छा को पूरा कर सकते हैं। जब जय विजय ने ऐसा सोचा तब ये सब श्रापाबाजी हुई, वैकुंठ में रोकना और ये करना ये कैसे हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन ये इच्छा थी जय विजय की, लेकिन यहाँ पर भगवान की इच्छा थी कि वो भी अपने वीर रस का स्वादन चाहते थे। तो जब जांबवान ने अपने मुष्टिका प्रहार से भगवान को संतुष्ट कर दिया, ये लिखा है प्रभुपाद जी ने कि जांबवान ने ऐसा ऐसा मुष्टिका प्रहार जोर से भगवान को किया कि भगवान बिल्कुल संतुष्ट हो गए। कुछ लोग पूछते हैं कि पितामह भीष्म को क्यों सामने पक्ष में रखा। पितामह भीष्म ने जब बाण को बरसात कर दी थी कृष्ण के ऊपर, है ना, और कृष्ण के ऊपर जब पितामह भीष्म ने बाणों की बरसात लगा दी तो कृष्ण को यह महसूस हो रहा था कि कोई हमारा भक्त हमारे पर फूलों की वर्षा कर रहा है, और भीष्म के उस बाण प्रहार से भगवान बहुत संतुष्ट हुए। इसी प्रकार जब जांबवान ने अपने मुक्कों को प्रहार किया भगवान पर, तो भगवान बहुत संतुष्ट हुए उनकी सेवा से। हमको ये जानना चाहिए कि भगवान किस सेवा से संतुष्ट हो गए। अपने मन घड़त तरीके से हम भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकते। भगवान जांबवजी ने इतनी सेवा भगवान की कि भगवान संतुष्ट हो गए। और जब भगवान संतुष्ट होते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं हमारी सेवा से, तब हम समझ पाते हैं कि हाँ ये भगवान हैं, तब भगवान दिखते हैं। कुछ कुछ लोग कहते हैं हमको दिखा दो। क्या दिखा दो? एक क्लास भी पढ़ा नहीं और कलेक्टर का नौकरी चाहते हो? कोई कहे कलेक्टर का नौकरी मिलेगा तो बोला हमको वो सीट कुर्सी दिखाओ। अरे पहले पढ़ना पड़ेगा, डिग्री लेना पड़ेगा, बाद में वो कुर्सी दिखेगा तुमको, ऐसे तो घुसने को भी नहीं मिलेगा। तो जब भगवान को जांबवान ने अपनी सेवा द्वारा संतुष्ट किया, भगवान संतुष्ट हो गए, तब जाने तवाम सर्वभूताना, अब जान गया कि तुम सभी बल के, शक्ति के, धन के, और जो भी इस संसार में किसी व्यक्ति के पास जो कुछ भी है, ये जान लीजिए ये एक महान भक्त का उद्गार है। ये हमारी बात नहीं है। जांबवान जो भगवान के महान भक्त हुए, भगवान का संग जिनको प्राप्त हुआ, वो कहते हैं कि इस संसार में किसी के पास अगर बल है, किसी के पास अगर धन है, किसी के पास अगर विद्या है, जो कुछ भी है उसका स्रोत कृष्ण है, ये जांबवान कह रहे हैं। इतना ही नहीं, आगे कहते हैं सुनिए, त्वाम ही विश्व सृजा सृष्टा, त्वाम ही विश्व सृजान सृष्टा, सृष्टा नाम अपि यच्च सत काल काल्यताम ईश पर आत्मा त्व आत्मन। बहुत सुंदर स्तुति है। स्वाम ही विश्वम सृजा सृष्टा। पिछले रविवार को कुछ भक्त आते हैं, एक रेलवे में, प्रभु जी अभी तो नहीं है, उन्होंने हमको वो प्रश्न किया कि प्रभु जी हम बार सुनते हैं कि इस जगत का सृष्टा ब्रह्मा जी हैं, कोई कोई लोग कहते हैं कि इस जगत का सृष्टि शिव शक्ति ने किया, कोई कोई लोग कहते हैं कि इस जगत का सृष्टि दुर्गा देवी ने किया, कोई कोई कहते हैं नहीं किसी इस देवता ने किया, कोई कोई कहते हैं साईं बाबा ने किया, कोई कोई कहता है स्वामीनारायण ने किया। तो हम ये बाहर सुनते हैं कि क्या है, अगर आज वो होते तो ये श्लोक, त्वम विश्व सृजान सृष्टा, आप जो कुछ भी बारते हैं का सृष्टि शिव शक्ति ने किया, ब्रह्मा जी ने किया या दुर्गा जी ने किया, तो यहां जांबवत कहते हैं त्वाम विश्व सृजाम, जिसने भी इस विश्व की सृजी की त्वाम सृष्टा, आप उस सृजन करने वाले के भी सृष्टा है। बात आई समझ में? त्वाम विश्व सृजाम सृष्टा, विश्व का सृजन करने वाले अगर कोई लोग सोचते हैं कि इसका शिव शक्ति ने किया या ब्रह्मा जी ने किया, हाँ ठीक है, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन जामवान कहते हैं विश्व सृजाम सृष्टा त्वाम, आप इस विश्व का सृजन करने वाले के भी सृष्टा हैं, उसको भी बनाने वाले आप हैं। लोग जब शास्त्रों को ठीक ठीक नहीं सुनते तो कई अटकल और अड़ंगाबाजी करते हैं। भक्तों के, ऐसे महान भक्तों के उद्गार को सुनना चाहिए हैं? सृष्टा नाम अपि यचत, और सृष्टि में जो कुछ वस्तु हैं जिसके द्वारा ये शक्ति या कोई भी इस जगत का सृजन करता है, वो उस वस्तुओं के सृष्टा भी आप हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्ण बुक में कि बड़े बड़े वैज्ञानिक बहुत बड़ा बड़ा आविष्कार करते हैं और लोग उन वैज्ञानिकों के प्रति लट्टू हो जाते हैं, क्या मोबाइल बनाया, क्या कंप्यूटर बनाया है, वैज्ञानिकों ने ये क्या बनाया है। प्रभुपाद जी कहते हैं उन वैज्ञानिकों के सृष्टा भी कृष्ण है, उनका दिमाग बनाने वाले वो कृष्ण है। तो आप उनको कृष्ण का भी प्रशंसा करो, आप गौण प्रशंसा कर रहे हैं, मूल प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। और उस कंप्यूटर और मोबाइल में जो वस्तुएं काम कर रही हैं उसके भी सृष्टा कृष्ण है, वो वस्तुएं उन वैज्ञानिकों ने नहीं बनाया, उन्होंने अपना बुद्धि लगाया, लेकिन वो बुद्धि भी वो कैसा गीता का लोग है, भूमि अनलरो अपोर वायु मन बुद्धि ख एवच अष्टधा प्रकृति में, ये आठ प्रकार की प्रकृति, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि, ये मेरी प्रॉपर्टी है, कृष्ण कहते हैं ये मेरा है। तो वैज्ञानिकों में अगर जो बुद्धि है तो उसके भी सृष्टा कृष्ण है। तम विश्व सृजाम सृष्टा, ये शब्द ऐसे हैं कि उसको बार बार उच्चारण करने चाहिए। और आत्मा और सभी आत्माओं के आप आत्मा है, परमात्मा है, मैं जान गया। फिर अब ये अंतिम लेते हैं, पूरा तो नहीं हो पाएगा कथा। अंत में कहते हैं सेतु कृतम स्व यश उज्ज्वलिता च लंका रक्ष तिरासि भुवि ही पेतु रिक्षु पातानी, आपके एक दृष्टि मात्र से वो समुद्र खल उठा रहा, उबल गया था है। उद्विग्नो, आपने समुद्र पर दृष्टि की थी और समुद्र खोलने लगा और हाथ जोड़कर आपके कदम में आया। क्यों? क्योंकि उस समुद्र के अंदर तिमिंगलो अवधि, बड़ी बड़ी मछलियां, छोटे छोटे जीव और तिमिंगल जो हेल मछली को भी अपने गले में अटका देती है, ऐसी बड़ी बड़ी मछलियां आपकी दृष्टि से शुद्ध हो गई थी क्योंकि समुद्र का जल खोलने लगा था आपकी दृष्टि से। तब समुद्र आपके पास आया और आपने क्या कहा, सेतु कृता, आपने सेतु का निर्माण किया और स्व यश और अपने यश को बढ़ाया। और उज्ज्वलिता च लंका, और लंका को जला दिया है, उज्ज्वलिता जला दिया, जल लंका को भस्म कर दिया। भस्म करने का अर्थ है वहां के राजा को। रक्ष सिरासी, रक्ष उस राक्षस का सिर, सिर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, दस दस सिर वाला उस राक्षस के आपने टुकड़े टुकड़े कर दिए है। सिरा रक्ष सिरासी भुवि पेतु रिक्षुपतानी, और उसके अंग अंग को छिन्न भिन्न करके उसके सारे सिर जो कभी आपके चरणों में झुके नहीं सब पृथ्वी पर गिर गए, वही आप हैं। इस प्रकार जब बहुत ही सुंदर स्तुति किया जामवान ने, तो भगवान ने उनकी स्तुति से भगवान संतुष्ट हुए, और संतुष्ट होकर जामवान के शरीर पर भगवान ने हाथ फेरा, क्योंकि उनके प्रहार से उनके सारे अंग दर्द कर रहे थे और सारा शक्ति क्षीण हो रहा था। लेकिन जैसे पिछली बार हमने सुना था कि ग्वाल बाल गोप बाल जब उस कालिया दह में जल पान करके मूर्छित होकर गिर गए, तो अमृत इक्षणयावृष्टि, भगवान ने अपनी अमृतमय दृष्टि से उनको जीवित किया, ऐसे भगवान ने अपने अमृतमय हस्त कमल से जैसे ही जामवान जी के शरीर पर फेरा, उनके शरीर फिर से हष्टपुष्ट जैसे थे वैसे हो गए या उससे भी शक्तिशाली हो गए। और इस प्रकार अपने भक्त को पुनः शक्तिशाली बनाकर भगवान ने कहा कि हे ऋक्षराज, हे वनराज, हमारे पर एक कलंक लगा है कि ये मणि हमने चुराया है, उस कलंक को मिटाने के लिए मैं ये मणि लेने के लिए आपके यहाँ आया। तो जाम भगवान बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर कहा, प्रभु मैं आपको ये मणि और मेरी पुत्री जाम्बवती आपको भेंट करता हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। और इस प्रकार जाम्बान ने अपनी पुत्री और मणि को भगवान को भेंट किया, भगवान ने उसे स्वीकार किया। और फिर जब गुफा से बाहर आए, अब प्रसन्न मत होइए, मैं कथा पूरा, ऐसे तो बहुत बड़ी कथा है, अभी बहुत लंबा कथा है इसके बाद। लेकिन जब भगवान बाहर आए तो देखा कि जो द्वारकावासी थे वो कोई नहीं। 12 दिनों तक द्वारकावासियों ने इंतजार किया और फिर निराश होकर द्वारका चले। द्वारका में जब देवकी जी ने, वसुदेव जी ने और रुक्मणी जी ने ये समाचार सुना तो सभी द्वारकावासी मिलकर चंद्रभागा देवी के मंदिर गए। कहाँ गए? आपके मन में होता होगा कि अभी तो आप कहते हैं थे कि अन्य देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए और ये सारे द्वारकावासी चंद्रभागा देवी के पास गए। आप देवताओं के पास जा सकते हैं, वे चंद्रभागा देवी के पास क्यों गए? क्योंकि कृष्णा हमको मिल जाए वापस हेमखेम। देवी जी के पास गए, प्रार्थना किया कि हमारे कृष्णा, ए देवी जी आप कृपा करिए कि हमारे कृष्णा हमको। तब उनकी प्रार्थना से देवी जी बहुत प्रसन्न हुई, संतुष्ट हुई कि आज अगर मैं इनको आशीर्वाद भी दूंगा तो मेरा आशीर्वाद 100% सत्य होगा, क्योंकि कृष्ण तो हेम खेम है ही, है ना। अब सीता और राम वाल्मीकि जी के आश्रम में गए तो वाल्मीकि जी को सीता और राम ने प्रणाम किया। तो वाल्मीकि सोचा कि हमारा आशीर्वाद सफल हो ना हो, लेकिन यहाँ तो सफल ही होगा, तो हमारे आशीर्वाद भी विजय हो जाए, इसके लिए सीता जी को आशीर्वाद दिया या सौभाग्यवती भव। अरे वो तो सौभाग्यवती है ही, लेकिन अपने आशीर्वादों को सत्य करने के लिए इस प्रकार ऋषि मुनि उनको आशीर्वाद देते थे कि हमारे आशीर्वाद भी परम सत्य हो जाए। तो देवी जी संतुष्ट हुई और जैसे ही संतुष्ट हुई तो कृष्णा अपनी नव विवाहिता पत्नी और मणि के साथ वहां आते तुरंत दिखे उनको। तो मेरे कहने का अर्थ है, अगर आप किसी देवी देवता के पास भी जाते हैं तो कृष्णा हमको प्राप्त हो जाए, हैं? इसके लिए आप किसी भी देवता के पास जा सकते हैं, गणपति के पास जा सकते हैं कि हे गणपति जी हमारा 16 माला ठीक से नहीं हो रहा है, कई विघ्न आ रहे हैं, कई बीच में बना जाते हैं, तो आप कृपा कीजिए कि ऐसा कुछ ना हो और ठीक से 16 माला हो जाए। हाँ, रूप गोस्वामी ने भी ये लिखा कि अपनी भक्ति में आने वाले विघ्नों का नाश के लिए गणपति से प्रार्थना करना चाहिए। तो कृष्ण प्राप्ति के लिए, कृष्ण भक्ति के लिए आप किसी भी देवी देवता की याचना या उनकी कृपा की याचना कर सकते हैं, जैसे गोपियां कात्यायनी देवी की पूजा करती थी। क्यों? कृष्ण हमको भर्तार के रूप में प्राप्त हो जाए। इसी प्रकार द्वारका वासियों ने चंद्रभागा देवी के पास गए, उनका स्तुति किया और कि हमको कृष्ण वापस मिल जाए। तो इस प्रकार कृष्ण मिल गए, आते दिखे और इस प्रकार कृष्ण द्वारका में प्रवेश किया। समय हो गया इसलिए इस कथा को यहीं विराम देते हैं। कथा तो बहुत लंबा है और बहुत शिक्षाप्रद भक्तों के लिए कथा है, लेकिन समय होने के कारण हम यहीं विराम देते हैं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। विशेष हम आज आभार प्रकट करना चाहेंगे हमारे एक बहुत अच्छे मित्र, और चूंकि कहते हैं कि सबको अपने गांव के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति बहुत अनुराग होता है, कोई व्यक्ति अपने गांव का कुत्ता भी देख ले तो हो ये हमारे गांव का है, उसके प्रति स्नेह हो जाता है। तो ये हमारे इस क्षेत्र के एक अच्छे भक्त हैं, अभी कुछ दिन पहले उनके क्षेत्र में भागवत कथा हुआ था लाल गोविंद के द्वारा, और उसके माध्यम से वे भी कृष्ण की सेवा में जुड़े हैं। ऐसे भक्त श्री कमलेश गणेश जी माली जो शिवगंज से हैं, राजस्थान से, और अच्छे भक्त हैं, मंदिर में सेवा करते रहते हैं, अभी अभी 6 महीने पहले वे लाइफ मेंबर भी बने हैं, और माता जी तो माला करती हैं, उनकी पत्नी तो बहुत अच्छी भक्त हैं, पिछली बार भी भाईंदर के भक्तों की सेवा में बहुत सेवा करी, और उसी दिन उन्होंने कहा कि मैं पुरुषोत्तम मास में भक्तों को प्रसाद देना चाहती हूँ, तो हम सब बहुत ही प्रसन्न हैं। और इस सेवा के लिए श्रीमान कमलेश जी गणेश जी माली ने जो आज प्रसाद स्पॉन्सर किया है, पुरुषोत्तम मास है, चतुर्मास है, और साथ में ये प्रभुपाद जी का प्रिय उत्सव रविवार का प्रीति भोज है। प्रभुपाद जी आपके इस सेवा से प्रसन्न है, सभी वैष्णव प्रसन्न है और कृष्णा प्रसन्न है, और आप पर निश्चित ये सब का कृपा प्राप्त होगा कि आप भी कृष्ण के भक्त निश्चित बने, कृष्ण की सेवा इस प्रकार करते रहें। तो सभी भक्तगण उनका आभार व्यक्त करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। और हम श्री गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि आपके परिवार से कोई सदस्य आए और मंदिर की तरफ से ये उपहार भेंट स्वीकार करें। हमारे मंदिर के वरिष्ठ भक्त कृतज्ञदास प्रभु के हाथों से ये भेंट स्वीकार कीजिए। श्रीमान गणेश जी आइए। आप सभी को मालूम है कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसमें किया गया दान व्रत तप और वैष्णवों की सेवा हमको अनेक प्रकार का अनेक गुना ज्यादा फल प्रदान करता है। इस मास में जो भी अधिक मास में भक्तों वैष्णवों को सेवा करना चाहते हैं, ब्रह्म भोज देना चाहते हैं, तो वे मंदिर के भक्तों से संपर्क करके लाभ ले सकते हैं।